नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।